ओम शांति। सभी जरा बुलंद आवाज से बोलेंगे ओम शांति। गुड इवनिंग। भगवान के घर में और इस पावन धरनी पर आप सब पधारे हैं। गगन की शान तारे हैं, चमन की शान बहारे हैं, हमारी शान इसी में है। आप सब इस आंगन में पधारे हैं, इस आंगन में पधारे हैं। ना फूलों की कमी थी, ना बहारों की कमी थी, इस गुलशन में बस आप सबके आने की कमी थी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप इससे पहले भी वीडियो के माध्यम से, गीता बहन के माध्यम से भी इस सेमिनार से संबंधित भी सुन चुके हो और कुछ स्वयं के बारे में भी इस वीडियो के माध्यम से जान चुके हो। अभी हम सभी इस सेमिनार के लिए कुछ कदम आगे बढ़ा रहे हैं। आप सब युवा भाई बहने हमारे सन्मुख बैठे हैं। युवा काल जीवन का वो सुनहरा, वो डायमंड पीरियड होता है जो चंद वर्षों का होता है, और उस चंद वर्षों के अंदर बहुत कुछ कर गुजरने की एक तमन्ना हर युवा के अंदर होती है, जिसके अंदर अपना और दूसरों का बोझ उठाने की ताकत हो उसे वास्तव में युवा कहते हैं। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक है जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। तो ऐसा हौसला बुलंद करने के लिए, ऐसी उपलब्धियों के लिए और भगवान की वो दिव्य दृष्टि आप सब पर पड़ी है, भगवान के घर में पहुंचे हैं, तो और कुछ अनेक आगे बढ़ने की और कुछ कर गुजरने की एक जो एक्स्ट्रा ताकत है वो आप यहाँ से प्राप्त करेंगे। आज के इस मंच की शोभा हमारे भ्राता मोहन सिंघल जी, जो कि ज्ञान सरोवर एकेडमी के डायरेक्टर हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, उनको मैं निवेदन करूंगी कि मंच पर वो अपना स्थान ग्रहण करें। और हमारे भ्राता सुनील जी अहमदाबाद से, जो कि हमारे यूथ विंग के कमेटी मेंबर हैं, उनसे भी मेरा विनम्र निवेदन है कि मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। हमारे भ्राता मोहन सिंघल जी का वेलकम हो रहा है। भ्राता सुनील जी, आप सब ताली तो बजाते रहेंगे, एक्टिव भी रहेंगे, अलर्ट भी रहेंगे, फिट भी रहेंगे। अभी आप ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन में और ज्ञान सरोवर एकेडमी में आप सब पहुंचे हैं। कार्यक्रम की अगली शुरुआत से पहले जहां अनेक प्रकार की और मार्गदर्शना एक युवा काल के लिए हमें मिले, उससे पहले जो बहुत जरूरी है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम आए हैं उसके बारे में हम जानें और जिस एकेडमी में आप बैठे हैं उसके बारे में जानें। तो इसके लिए मैं निवेदन कर रही हूँ भ्राता मोहन सिंगल जी, जो कि आप सबके सामने विराजमान है, इनका भी हम फिर से कर्तव्य ध्वनि से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। एक ब्रीफ बायोडाटा आपको भ्राता जी का बताना चाहूंगी। आपने 1963 में अपनी एजुकेशन पूरी की और 1967 में आपने एमटेक की डिग्री प्राप्त की धनबाद इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के द्वारा, और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आप बहुत सारी जिम्मेवारियों को संभाल रहे हैं। आप राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के भी गवर्नर बॉडी के मेंबर हैं, संस्था की मैनेजमेंट कमेटी के भी आप मेंबर हैं, साइंटिस्ट और इंजीनियर विंग के आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, और ज्ञान सरोवर परिसर जिसके अंदर आप बैठे हैं इस एकेडमी के आप कोऑर्डिनेटर हैं, और अनेक प्रकार की बुक्स भी आपने लिखी हुई हैं और अनेक अभियान को भी आपने लीड किया है, और आप 1992 में पर्यावरण अवार्ड के द्वारा भी श्री अर्जुन सिंह जी एचआरडी मिनिस्टर के द्वारा आप अवार्डिड हुए, और आपने 5 बुक्स भी लिखी हैं, स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट, ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर ए बेटर वर्ल्ड, न्यू डायरेक्शन इन एजुकेशन, साइंस स्पिरिचुअलिटी, एथिक्स एंड एनवायरमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट, और भी अनेक प्रकार की क्रिएटिविटी में आप हमेशा लगे रहते हैं, और यूथ विंग की भी आप 1985 में सेक्रेटरी रहे हैं, और इसकी जो रैलीज निकलती हैं उसको भी आपने लीड किया है। ऐसे हमारे भ्राता जी को मैं निवेदन करूंगी कि आप ब्रह्मा कुमारीज के बारे में, एकेडमी के बारे में, प्लस हमारे आए हुए मेहमानों का वेलकम करेंगे, वेलकम स्पीच भी हम सबके सम्मुख रखेंगे। भ्राता मोहन सिंगल जी,
गुड इवनिंग एंड ओम शांति। मैं समझता हूँ ये एक कईयों के लिए नया शब्द भी होगा, ओम शांति, जिसके बारे में आपको यहाँ पर और भी परिचित कराया जाएगा। अरावली पर्वत श्रृंखला की इन हरी भरी वादियों के बीच में स्थित ये हमारा ज्ञान सरोवर कॉम्प्लेक्स जिसमें आप बैठे हैं, ये अपने आप में एक बहुत ही अनूठा कॉम्प्लेक्स है। 35 एकड़ में फैला हुआ ये कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर हमने अल्टरनेट एनर्जी का भी काफी इस्तेमाल किया है। यहाँ पर आप आए होंगे तो ये वातावरण आपको बहुत ही स्पिरिचुअली चार्ज्ड एटमॉस्फेयर से भरपूर मिला होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने किसी भी प्रकार का प्रकृति का कोई हनन नहीं किया है। जब से ये कॉम्प्लेक्स बना है तब से ही इसके अंदर जैसा पेड़ है, स्टोन्स हैं, जैसा भी यहाँ का वातावरण है उसको मेंटेन रखने का प्रयास किया है। इसलिए ये बाहर का प्राकृतिक वातावरण मनुष्य की आंतरिक प्रकृति यानी ह्यूमन नेचर और उसके अंदर जो भी शक्तियां हैं उनको और बाहर निकालने का प्रयास करता है, और सभी ये अनुभव करते हैं कि ये वातावरण अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली वातावरण है। जिस हॉल में आप बैठे हुए हैं ये हॉल हार्मनी हॉल इसे कहते हैं, और यहाँ पर अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम समय प्रति समय होते रहते हैं। लगभग 1600 की कैपेसिटी का ये हॉल है और इसके अंदर 22 भाषाओं के ट्रांसलेशन की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके नीचे एक हॉल है मेडिटेशन हॉल, जहां पर इस कॉम्प्लेक्स में रहने वाले जो लगभग 200 का स्टाफ है वो उनका कार्यक्रम प्रतिदिन चलता है, जो सुबह 3:30 बजे से शुरू हो जाता है और उसके अंदर ज्ञान, योग, सेवा आदि के कार्यक्रम चलते रहते हैं। साथ ही साथ इस कॉम्प्लेक्स में एक स्पिरिचुअल आर्ट गैलरी है जिसमें भारत की प्राचीन गौरवपूर्ण गाथा का पूरा चित्रों के द्वारा, मॉडल्स, लेजर शो, लाइट एंड साउंड आदि के द्वारा वो दिखाने का पूरा प्रयास किया गया है। केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व की सभी मुख्य धार्मिक और राजनीतिक सत्ताओं का उसके अंदर बहुत ही रुचिपूर्वक वर्णन किया गया है। इसके अपोजिट हमारा एक कॉम्प्लेक्स है इंटरनेशनल सेंटर फॉर हायर लर्निंग, वहां पर हमारे पैरेलल प्रोग्राम्स चलते हैं, 13 हॉल है वहां पर, और वहीं पर एक हॉल है स्पार्क नाम से, स्पिरिचुअल एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर, जिसमें आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी और साइंस दोनों का वर्णन किया गया है चित्र माध्यम आदि के द्वारा। फर्दर अगर हम आगे जाते हैं तो वहां पर डाइनिंग कॉम्प्लेक्स, उसके अंदर विभिन्न हॉल हैं, आप लोगों की तो अधिकतर व्यवस्था शायद 7 नंबर हॉल में की गई है भोजन आदि की, वो भी डिटेल में आज आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा, जो भी वहां पर भोजन आदि है, जो मिडिल लेवल कॉम्प्लेक्स है, लेवल है, उसके अंदर ये सब सुविधाएं हैं। फर्दर और जो डाउन जाते हैं, हमारा एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स विष्णुपुरी है और उसके अंदर डिस्पेंसरी है। वैसे तो आप सब लोग बहुत ही फ्रेश दिख रहे हैं और हमें आशा है आप रहेंगे भी इन 3-4 दिन जब तक आप यहाँ हैं, लेकिन फिर भी यदि बाई चांस कोई आवश्यकता हो किसी रीति से, तो वहां पर एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदी का इनिशियल ट्रीटमेंट और वो सुविधाएं हैं। और साथ ही साथ यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर हमारा ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर है, लगभग 200 से अधिक बेड्स की कैपेसिटी के वो हॉस्पिटल और अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी के साथ। ये तो एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर, बाकी हमें विश्वास है कि उसकी आवश्यकता आपको नहीं रहेगी। हाँ, उसके विजिट के लिए आपको एक दिन यहाँ पर दिया गया है, जब माउंट आबू का पूरा विजिट आपके शेड्यूल के अंदर इंक्लूड किया गया है। फर्दर और जाएं नीचे कॉम्प्लेक्स में तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एक बहुत अच्छा है, और उसके अंदर जितना भी हमारा किचन वेस्ट और जो टॉयलेट वेस्ट आदि है, उन सबको रिसाइकिल करके और उस पानी को यहाँ नर्सरी आदि में वो सब यूज किया गया है, इसलिए यह जो कॉम्प्लेक्स है सदा ही हरा भरा रहता है। ऐसे कॉम्प्लेक्स तो कई हैं, लेकिन यहाँ के इस कॉम्प्लेक्स की एक विशेषता ये है कि बाहर के इस जो वेस्ट है उसको बेस्ट बनाने का जो पुरुषार्थ किया गया है, वो केवल भौतिक स्तर तक ही सीमित नहीं है, मानसिक स्तर तक भी, क्योंकि यहाँ पर जो भी कोर्सेज हैं, आपने भी अपने शेड्यूल में देखा होगा, तो जो कोर्सेज हैं वो सब होलिस्टिक नेचर के होते हैं, और उसके अंदर यहाँ पर कैसे हम नेगेटिव थॉट्स को अपने पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करें, जैसे वो वेस्ट को बेस्ट में करते हैं, ऐसे ही हमारे अंदर के जो नेगेटिव थॉट्स, वीक थॉट्स, जो ह्यूमन वीकनेसेस हैं, उनको हम कैसे अपना एक स्ट्रेंथ बना लें, वो इसका विशेष वर्णन यहाँ पर आगे आने वाले 3-4 दिनों में किया जाएगा। इसमें जो भी कोर्सेज चलते हैं, और ये कोर्सेज हमारे ब्रह्मा कुमारीज इंस्टीट्यूशन की सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन है, उसके अंतर्गत लगभग हमारी 19 विंग्स हैं, हर प्रोफेशन से कनेक्टेड है, जैसे यह आपका यूथ विंग है, ऐसे मेडिकल विंग है, साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स, सोशल सर्विस, एडमिनिस्ट्रेटर, बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज, मीडिया आदि आदि विंग्स हैं, 19 विंग्स, उनके यहाँ पर प्रोग्राम चलते रहते हैं, लगभग अप्रैल से ये कार्यक्रम शुरू होते हैं और अगस्त सितंबर तक ये प्रोग्राम चलते हैं 19 विंग्स के। और उनकी विशेषता ये है कि जो भी प्रोग्राम होते हैं, जैसे मैं बता रहा था, होलिस्टिक नेचर के होते हैं, और होलिस्टिक नेचर से भाव कि जीवन के लगभग सभी मुख्य पहलू, चाहे फिजिकल लेवल है, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, प्रोफेशनल, तो उन सब के ऊपर प्रकाश डाला जाता है, जिससे कि एक होलिस्टिक, एक एनर्जेटिक मानव का निर्माण हो सके। और उसके लिए भी विशेष बल जो दिया जाता है, जो हमारा इंटरनल एस्पेक्ट है, स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट, उसके ऊपर, आपने अपने शेड्यूल में भी देखा होगा कि सारे दिन भर विभिन्न कार्यक्रम हैं, लेकिन साथ ही साथ जो विशेष कार्यक्रम है मॉर्निंग अराउंड 6:30 to 8 hours मॉर्निंग में, वो राजयोग शिविर का है। उस राजयोग शिविर के माध्यम से अपनी सोई हुई सुषुप्त शक्तियों को कैसे हम जागृत करके जीवन में सदा हर क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकते हैं, उस पर विशेष बताने का प्रयास किया गया है। और इसके साथ साथ ये जो कार्यक्रम होते हैं, ये यहाँ पर जैसा मैं बता रहा था अप्रैल से लगभग अगस्त सितंबर तक चलते हैं, और उसके बाद यहाँ पर रेनी सीजन में ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर्स वह कार्यक्रम अधिकतर चलते हैं, जिससे कि ये ट्रेनिंग यहाँ तक ही सीमित न रह सके। हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, वो भारत बहुत बड़ा देश है, कोने कोने में जाकर और विदेशों में जाकर भी वह उस ट्रेनिंग के द्वारा सब जगह दूसरों को लाभान्वित कर सके। इसके बाद ये कॉम्प्लेक्स हमारा जो है बुक रहता है मोस्टली ओवरसीज ब्रांचेस के लिए। आपको ये बताते हुए हर्ष होता है, ये कॉम्प्लेक्स का निर्माण प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया है, जिसका कि हेडक्वार्टर यहाँ माउंट आबू, यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर दूर पांडव भवन कॉम्प्लेक्स है, वो हेडक्वार्टर है, वो भी आपको देखने का सौभाग्य मिलेगा। 1936-37 में एक जो नन्ना सा पौधा रोपा गया था, एक जो बीज आध्यात्मिकता का बोया गया था, निराकार परमपिता परमात्मा शिव के द्वारा साकार प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से वो आज एक विशाल वट वृक्ष के रूप में विश्व के पांचों कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ है, और इसकी शाखाएं केवल भारत ही नहीं विश्व भर में है। लगभग 500 से अधिक शाखाएं हैं भारत के, विश्व के 140 से अधिक देशों में। भारतवर्ष में तो कोने कोने में ब्रांचेस हैं, लगभग 9000 के करीब इसकी टोटल ब्रांचेस हैं। ये इसका माउंट आबू इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है, ओवरसीज हेडक्वार्टर इसका लंदन में है, और इस प्रकार से यह विश्वविद्यालय अपने विभिन्न विंग्स के माध्यम से भी सेवा करता है। और जैसा मैं आपको बता रहा था, जो इसके 19 विंग्स हैं, उनके कार्यक्रम जो चलते हैं वो अक्टूबर से लेकर के लगभग मार्च मास तक हमारी ओवरसीज जो ब्रांचेज हैं, लगभग 140 से अधिक ब्रांचेज, उनके डेलीगेट्स यहाँ पर आते हैं और उनके प्रोग्राम्स यहाँ पर एम्पावरमेंट, सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ एम्पावरमेंट के उनके कार्यक्रम यहाँ पर चला करते हैं। और इस रीति से पूरे वर्ष भर ये कॉम्प्लेक्स बहुत बहुत व्यस्त रहता है। ये कॉम्प्लेक्स केवल इतना तक ही नहीं, यूनाइटेड नेशन के द्वारा भी सेवाएं कर रहा है, और यूनाइटेड नेशन से ये एफिलेटेड है। उसकी जो दो मेन बॉडीज हैं, यूनेस्को और यूनिसेफ, उसका ये कंसल्टेटिव स्टेटस का मेंबर है, और जो भी कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस के द्वारा समय प्रति समय आयोजित किए जाते हैं, उन कार्यक्रमों में विशेष करके बहुत एक्टिव रीति से हमारे विश्व भर के 140 देशों की जो ब्रांचेज हैं वो यूनाइटेड नेशंस के सभी कार्यक्रमों में सहयोग करते हैं। जैसे अभी आप सबको ज्ञात ही है कि 21 जून का दिवस इंटरनेशनल योगा डे के रूप में पूरे विश्व भर में मनाया जाने वाला है, और जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके ही इनिशिएटिव पर ये इंटरनेशनल योगा डे यूनाइटेड नेशन ने एक्सेप्ट किया गया है। तो हमारी वार्षिक मीटिंग में भी ये प्लान बना है कि पूरे विश्व भर के जितने भी एम्बेसीज हैं, और साथ ही साथ जिन देशों में हमारी ब्रांचेज हैं और जहां नहीं भी है, वहां पर ये योगा, इसको यथार्थ रीति से उसका चित्रण करके वहां पर योगा का वर्णन किया जाए, योगा को सिखाया जाए, स्पेशली विशेष करके राजयोग, जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की एक स्पेशलिटी है। और राजयोग में विशेष करके इसी बात का अभ्यास कराया जाता है। बाहर का जर्नी तो हम सब करते हैं, आप करके आए हैं, लेकिन आंतरिक जर्नी, इंटरनल, हम कैसे अंदर उतर के अपने अंदर जो इंटरनल पावर्स हैं उनको जागृत करें। आज विडंबना यह है कि हम जानते थ्योरेटिकली बहुत कुछ है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना लाइफ में कई बार वो डिफिकल्ट महसूस होता है। फॉर एग्जाम्पल हम जानते हैं स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये सिगरेट पैक पर लिखा होता है। जानते हुए भी हम अपनी कमजोरियों के वशीभूत होकर के स्मोकिंग कर लेते हैं और फिर अनेक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। इसी प्रकार से बचपन से हम सब सुनते आए हैं अपने पूर्वजों से, और सब भाई क्रोध नहीं करना चाहिए, बहुत नुकसानदायक है, ऐसे हार्मोन्स का सेक्रीशन होता है क्रोध के वक्त, जो जिसका इफेक्ट बहुत इल इफेक्ट होता है बॉडी के ऊपर, उसकी हेल्थ के ऊपर, और बहुत समय तक उसका असर रहता है। जानते हैं थ्योरिटिकली, लेकिन फिर भी हम कह देते क्या करें भाई, हम क्रोध करना तो नहीं चाहते, क्रोध आ जाता है, हमारा जवान स्लिप कर गई और ये शब्द मुंह से निकल गए आदि आदि। तो बिल्कुल ये वही स्थिति है जैसे महाभारत प्रसिद्ध दुर्योधन की थी, जो दुर्योधन कहा करता था कि भाई मैं जानता हूं सत्य क्या है लेकिन मैं उसका पालन नहीं कर सकता, मैं जानता हूं असत्य क्या है लेकिन मैं उसे छोड़ नहीं सकता। बस लगभग आज वही स्थिति हम सभी की भी है, लेकिन यहां पर इसीलिए इस कार्यक्रम में जो आपको बुलाया गया है, जो योग शिविर मॉर्निंग के खास रखे गए हैं, उसमें इसी बात पर विशेष बल दिया जाएगा कि किस प्रकार से हम अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत कर सके, इंटरनल जर्नी। मुझे एक बहुत याद आता है दो लाइन का कि जिंदगी भर, गालिब की दो लाइन है कि जिंदगी भर गालिब एक ही भूल करते रहे, जिंदगी भर गालिब एक ही भूल करते रहे, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करते रहे, बाहर की बात। तो मोस्टली क्या होता है कि हमारा अपने कोई चीज होती है, वीकनेस होती है, लेकिन हम दूसरों पर ब्लेम कर देते हैं, भाई इसने ऐसा करा इसलिए मुझे गुस्सा आ गया, अगर ये ऐसा ना करते तो मुझे स्ट्रेस या टेंशन नहीं रहती आदि आदि। तो एक तो ये प्रयास कराया जाता है कि अंदर उतर के कैसे हम अपने को झांक सकें और जीवन के हर पहलू का, दो पहलू होते हैं तो उसका पूरी रीति से अवलोकन कर सकें। साथ ही साथ इसके अंदर दूसरा कि यहां पर जो बात बताई जाती है वो जब आप जाएंगे, तीन दिन तक आप मुझे आशा है सीरियसली इसको अटेंड करेंगे पूरा, और ये कोर्स है पूरा का पूरा, उसको अटेंड करेंगे और अटेंड के बाद जब आप जाएंगे तो अपने को एक लाइट हाउस महसूस करेंगे। मुझे भी याद आता है अपने अर्लियर डेज व्हेन आई वाज डूइंग ग्रेजुएशन इन लखनऊ यूनिवर्सिटी एज अर्ली एज इन 1963 व्हेन मोस्ट ऑफ यू मस्ट नॉट हैव बीन बोर्न। उस वक्त जब मैं इसके कॉन्टेक्ट में आया तो कई हमारे कॉलीग्स कहा करते थे, अरे भाई कहाँ योग वोग में जा रहे हो, क्या सीखने की उसकी, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है आदि आदि, बड़े बड़े लोग भी सब बोला करते थे। लेकिन हमने ये देखा कि जो यहाँ पर सिखाया जाता है मेडिटेशन, उसको अगर हम अपनी स्टडीज में, अपने प्रोफेशन में अगर यूज करते हैं तो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स बहुत हो जाती है, और उस क्लैरिटी ऑफ थॉट के द्वारा डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, और उस डिसीजन के द्वारा राइट डिसीजन एट राइट टाइम, वो एक कैपेबिलिटी अंदर जो जागृत हो जाती है वो जीवन भर बहुत बहुत लाभदायक होती है। हम सभी चाहते हैं कि हम जीवन में सफल हों, इसलिए इस दृष्टिकोण से ये इस एज के लिए ये बहुत बहुत यूजफुल है, और मुझे खुशी है आज आप सब लोगों को, इतने यूथ्स को देख करके मुझे भी अपने वो बहुत पुराने दिन याद आ गए जब मैं भी इस इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ा था, और आज तक भी मैं जुड़ा हुआ हूं, और मुझे ये बहुत खुशी होती है बताते हुए कि इससे जीवन के अंदर जो लाभ होते हैं वो आप इन तीन दिनों में ही उसका इनिशियल टेस्ट करके यहां से जाएंगे। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जैसे आपको बताया गया इंटरनेशनल हेडक्वार्टर तो माउंट आबू है ही, लेकिन ऐसे ऐसे कॉम्प्लेक्स हमारे भारत भर में लगभग 10-12 रिट्रीट सेंटर हैं, और उन जगह भी ये सारे कार्यक्रम विशेष रीति से चला करते हैं। यहां से आप एड्रेस वगैरह लेकर के जाएंगे, और जितनी भी ब्रांचेज हैं उनके अंदर ये सारे कोर्स, वो तो डिटेल बताया जाएगा, पॉजिटिव थिंकिंग कोर्स आदि आदि, उन सबको यहां पर बताया जाएगा। मैं अंत में आप सबका बहुत 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 एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और आशा करता हूं कि आपका जो यहां पर स्टे है बहुत ही सुखद रहे, सफल रहे, जीवन के अंदर वो एक ऐसा भाव लेकर के जाए। मुझे एक शब्द याद आ रहा है, आत्मा का, अंग्रेजी में आत्मा को सोल कहते हैं, SOUL, या सब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्सल लव। अब प्रेम शब्द हम सबके जीवन में एक बहुत महत्व रखता है और एक ऐसा चीज है, हम सब जानते हैं हमें सब प्रेम करें, हम सबको प्रेम करें, और ये आदि काल से ही चला आ रहा है। इसी बात को अमीर खुसरो, बहुत बड़े दार्शनिक होके गए थे, उन्होंने बड़े अच्छे दो शब्दों में कहा है कि खुसरो दरिया प्रेम का, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी जाकी धार, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी जाकी धार, जो तैरा वो डूब गया और जो डूबा सो पार। ये दरिया प्रेम का है, इसके अंदर जो डूब गया वो तो जीवन में पार हो गया, और जो तैरा इसके अंदर, जिसने वो करा, वो वास्तव में तैरने का प्रयास किया, डूब गया। भाव क्या है? प्रेम एक भौतिक प्रेम तक ही सीमित न रहे, लेकिन ये एक आध्यात्मिक प्रेम, स्पिरिचुअल, आत्मा का परमात्मा से प्रेम, ये यहां पर जो मेथोडोलॉजी आपको बताई जाएगी उसको लाइफ में अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि जीवन में आप सफल होकर रहेंगे। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद, ओम शांति।
थैंक यू भ्राता जी, बहुत अच्छी तरह आप सबको इंस्टीट्यूशन के बारे, एकेडमी के बारे बताया, विंग्स के बारे में भी बताया, और आप सब हैं यूथ विंग के। युवा तो शब्द ही ऐसा है, युवा आता है तो एक एनर्जी भरा हुआ जो शब्द है, आत्मविश्वास, मनोबल, ये दो पंख कहे जाते हैं युवाओं के पास, और इस आध्यात्मिक धरनी में ये पंख और भी ज्यादा उड़ान भरने में सक्षम होते जाएंगे, क्योंकि युवा कुल की शान होते हैं, माँ बाप के अरमान होते हैं, राष्ट्र का अभिमान होते हैं, और हिम्मत और साहस की पहचान होते हैं, उसको युवा कहा जाता है। युवा का ऑपोजिट करो वायु, वायु का दूसरा शब्द है हवा, और हवा को उलट करो तो वावा, आपको हर काम करना है वावा का। और आपने जोरदार ताली से धन्यवाद नहीं किया भ्राता जी का, ताली में कोई टैक्स नहीं है। और दूसरी बात ध्यान में रखनी है, आपका फेस हमेशा स्माइलिंग रहना चाहिए, स्माइलिंग फेस कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होता है, और बहुत सारे फैशन चेंज होते रहते हैं, तो इसलिए चेहरे पे वो रूहानियत, वो रौनक नजर आती रहनी चाहिए। और जैसे अनेक विंग में से बताया, एक विंग है यूथ विंग, युवा प्रभाग। तो हमारे सुनील भाई हमारे बीच में हैं, हमारा जो नेशनल कोऑर्डिनेटिंग ऑफिस है अहमदाबाद, वहां पर आप चंद्रिका दीदी जी जो आपसे आगे मिलेंगे उनके साथ हमारा नेशनल कोऑर्डिनेटिंग ऑफिस संभालने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। आप पिछले 28 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी के साथ अटैच हैं, हमारी युवा प्रभाग के आप कमेटी मेंबर हैं, और आप पूर्णता इसी ईश्वरीय सेवाओं में अपना जीवन समर्पित किए हुए हैं। तो मैं निवेदन करूंगी हमारे सुनील भाई को कि वो यूथ विंग के बारे में हमें जानकारी दें। सुनील भाई,
ओम शांति। संस्था के बारे में बहुत सारी जानकारी आपने वीडियो के माध्यम से प्राप्त की है, जिसमें ब्रह्मा कुमारी क्या है वो वेलकम होम के अंदर आपने देखा होगा। उसके बाद एक छोटा सा वीडियो आप सबको दिखाया गया था 9 मिनट का, यूथ फॉर टुमारो। तो वो यूथ विंग क्या करती है उसमें भी काफी कुछ दिखाया गया था। बेटा मोहन सिंघल जी ने भी अपने वक्तव्य में ब्रह्मा कुमारी के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी है, इसलिए मैं आप सबका बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि इसके बाद तुरंत अपना इनॉग्रेशन सेशन है। लेकिन जैसे आपने वीडियो में देखा और आप सभी जानते हैं कि आप यूथ के प्रोग्राम में आए हैं, इसलिए जो एक्टिविटी आपको एक छोटे ग्लिम्स के रूप में दिखाई थी वो फिर से फोटोग्राफ्स के रूप में आपको बताना चाहूंगा कि कैसे 1985 से लेकर के 30 साल का जो स्वर्णिम इतिहास है यूथ विंग का। अभी ये सागर को गागर में समाने जैसी बात है, तो थोड़े समय में ये संभव तो नहीं हो पाता है कि यूथ विंग जैसे ब्रह्मा कुमारी जो है वो उसका विस्तार इतना ज्यादा है तो थोड़े समय में नहीं सुना सकते हैं, लेकिन यूथ विंग क्या करती है वो आपको फोटोग्राफ्स के द्वारा थोड़ा ग्लिम्सेस दिखाएंगे। जैसे आप सभी ने सुना कि यूथ विंग 1985 में एस्टैब्लिश हुई और तब से लेकर के सेवाएं कर रही है। विशेष रूप से आप सभी स्क्रीन पे देख रहे हैं उसका जो उद्देश्य है हम सभी जानते हैं कि भारतवर्ष जो है वो युवा देश माना जाता है, सबसे ज्यादा युवा संख्या जो है विश्व में वो भारत देश में है। तो समाज के जो युवा हैं उनके जीवन में मूल्यों के प्रति जागृति लाना, राजयोग मेडिटेशन जिसके बारे में आदरणीय भ्राता जी ने सुनाया और आप सभी कल से उसका लाभ प्राप्त करने वाले हैं, उसके द्वारा व्यक्तित्व का विकास करके जीवन में मूल्य ला करके कैसे समाज के और राष्ट्र के उत्थान में मदद रूप बनना, और विशेष रूप से जैसे आपको बताया राजयोग का तो यहाँ पे एक छोटा सा चित्र बताया है, आधा कट हो रहा है ब्रदर, ये चित्र जो है इसके अंदर ये दिखाया गया है कि राजयोग जो है मेडिटेशन उसका अभ्यास करने से कैसे जीवन के अंदर परिवर्तन आता है। ब्रह्मा कुमारीज की सभी एक्टिविटीज के अंदर राजयोग ही मूल में है और राजयोग का अभ्यास करने से, एक साल का अभ्यास करने से क्या परिवर्तन आया, ऐसे हमने 1300 युवाओं के ऊपर सर्वे किया था और उसके अंदर पाया कि जितनी भी बुराइयां हैं जैसे ड्रग लेना या गंदी फिल्में देखना, गंदे नॉवेल्स पढ़ना, गुस्सा करना, करप्शन करना, ऐसी बहुत सारी नेगेटिविटी जो होती है एक व्यक्ति के अंदर, तो राजयोग का अभ्यास करने से कैसे जीवन परिवर्तन हो जाता है, तो वो बात उसके अंदर उस सर्वे में बताई गई और उसी आधार पर यूथ विंग की सारी एक्टिविटीज चलती है। स्क्रीन प्लीज। 1985 में जैसे आप सबने सुना पदयात्रा का आयोजन किया गया था पूरे भारतवर्ष में और उस वर्ष को यूथ वर्ष के रूप में यूनाइटेड नेशंस ने अनाउंस किया था। 12 पदयात्राएं पूरे भारतवर्ष में निकाली गई थी और सबसे लंबी पदयात्रा जो थी वो कन्याकुमारी से दिल्ली की थी 3300 किलोमीटर की और उसमें बहुत सारे हमारे 650 से भी ज्यादा राजयोगी ब्रह्मा कुमार भाई बहनों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। दूसरा है भारत एकता युवा पदयात्रा के बाद, ये उसके कुछ ग्लिम्सेस है, उस समय के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के साथ भी लास्ट में मुलाकात की गई थी। नैतिक जागृति अभियान मेटाडोर के द्वारा भारतवर्ष में अलग अलग स्थानों पर रैलियां निकाली गई थी और समाज के विभिन्न वर्गों की उसके द्वारा सेवाएं की गई थी, जैसे अंधश्रद्धा, कुरीति निवारण, व्यसनों से मुक्ति आदि आदि कार्यक्रम किए गए थे। उसके कुछ एक फोटोग्राफ से साइकिल यात्रा, ये उस समय पूरे भारतवर्ष में 1993 में की गई थी सद्भावना यू साइकिल यात्रा, उसके अंदर जैसे चेन्नई, मुंबई, बेंगलोर, मुजफ्फरपुर, इलाहाबाद आदि आदि पूरे भारतवर्ष में बहुत सारे स्थानों पर ये यात्रा निकाली गई थी और जिसके द्वारा अपने भारत देश के जो यूथ है, युवा है, उनकी शक्ति को हम कैसे भारत के निर्माण में लगाए उसके ऊपर विशेष ध्यान दिया गया था। उसके कुछ इस फोटोग्राफ्स हैं। सकारात्मक परिवर्तन पाठ्यक्रम, ये एक बहुत सुंदर कोर्स डिजाइन किया गया है यूथ विंग के तरफ से और ये एक ऐसा कोर्स है, 7 दिन अलग अलग सेशन होते हैं, एक एक घंटे का, ये सर्टिफिकेट कोर्स भी है। ये कोर्स करने के बाद आपको एक आयाम मिल जाता है कि कैसे एक सकारात्मक व्यक्ति अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है। तो हमें अपने जीवन को श्रेष्ठ और सकारात्मक बनाना है, उसकी स्टेप्स ये 7 दिन के स्टेप्स के अंदर बहुत अच्छी तरह से बताया जाता है। युवा विकास अभियान 1995 में किया गया था, उसके द्वारा भी बहुत सारी सेवाएं की गई, उसके कुछ एक फोटोग्राफ्स है। ये युवा महोत्सव पूरे भारतवर्ष में किए गए थे 97, 98, 99 में, अलग अलग विषय को लेकर के, यहाँ माउंट आबू ज्ञान सरोवर जहाँ पे आप अभी बैठे हुए वहां पे भी किया गया था और पूरे भारतवर्ष में भी किए गए थे। उसके कुछ एक फोटोग्राफ्स हैं, आप देख रहे हैं इसी कैंपस के फोटोग्राफ्स हैं। कॉम्पिटिशन्स रखी गई थी, सबको इनाम वितरण किया गया था, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट होते हैं। रीबिल्ड यूथ टू रीबिल्ड नेशन, ये प्रोजेक्ट 2000 से 2002 के बीच किया गया था, उसके अंदर भी बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम गांव और शहरों में किए गए थे युवाओं का सशक्तिकरण करने के लिए। ये उसके कुछ एक फोटोग्राफ्स हैं। राष्ट्रीय एकता शिविर भारत सरकार के तरफ से नेशनल इंटीग्रेशन कैंप के अंतर्गत हर वर्ष युवा प्रभाग और भारत सरकार मिलकर के अलग अलग स्थान पर नेशनल इंटीग्रेशन कैंप करते हैं। 2001 में भी किया था, 2004 में भी किया था, और तब से लेकर के हमारा दिल्ली में ओम शांति रिट्रीट सेंटर है, वहां पे हर साल अभी भी एनआईसी के कैंप लगते रहते हैं। स्वच्छ स्वस्थ स्वर्णिम भारत, आप कहेंगे ये प्रोजेक्ट तो इस साल का है, लेकिन शुरू में 2003 से 5 के अंदर भी हमने ये प्रोजेक्ट लिया था, जिसके अंदर हमने शहरों में और गांवों के अंदर विशेष रूप से क्लीनलीनेस के प्रोग्राम किए थे, री एडिक्शन के, ब्लड डोनेशन कैंप, हेल्थ चेकअप, ऐसे अलग अलग कार्यक्रम किए थे, और उसके द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया था। उसके कुछ एक फोटोग्राफ्स हैं। ये जैसे मैंने आपको बताया 2004 में भी राष्ट्रीय एकता शिविर की गई थी। स्वर्णिम भारत युवा पदयात्रा एक बहुत विशेष कार्यक्रम 2006 में जो हमारा हुआ था, पूरे भारतवर्ष में 30,000 किलोमीटर से भी ज्यादा चल करके हमारे युवा भाई बहनों ने गांव गांव शहरों में जाकर के सेवाएं की थी। ये उसके कुछ एक फोटोग्राफ्स है। उसको लिम्का बुक ऑफ द रिकॉर्ड में भी स्थान प्राप्त हुआ है। टच द लाइट, ये बहुत विशेष कार्यक्रम है स्कूल के बच्चों के लिए। तो युवा प्रभाग के द्वारा हम ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करते हैं, उसमें यूथ को ट्रेनिंग देते हैं, और वो स्कूल्स में जाकर के ये टच द लाइट प्रोजेक्ट चलाते हैं, जिसका सिलेबस बना हुआ है 6, 7, 8 स्टैंडर्ड का। तो बच्चों के अंदर बचपन के अंदर ही जब अच्छे मूल्य और जीवन की आवश्यक जानकारी मिल जाती है कि सही क्या है, गलत क्या है, तो बड़े होने से पहले वो जागृत हो जाते हैं और गलत रास्ता चुनते नहीं है, सही रास्ता अपनाते हैं। ये प्रोजेक्ट पूरे भारतवर्ष में अभी फिलहाल 3,000 से भी ज्यादा स्कूलों में चल रहा है। ये कुछ एक फोटोग्राफ है उसके। हार्मन यूथ मैराथन 2009 में किया गया था पूरे भारतवर्ष में। अभी आपको मैं जो फोटोग्राफ दिखा रहा हूं डिटेल नहीं सुना रहा हूं, लेकिन ये जितने भी यूथ के प्रोग्राम बनते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो पूरे भारतवर्ष में बनते हैं। सभी जगह पर बड़े बड़े लेवल पे कार्यक्रम होते हैं। माउंट आबू इसका इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है, ब्रह्मा कुमारी इसका। साथ साथ ये जितनी भी विंग्स की सेवाएं होती हैं, जैसे आपको अभी पूरा डिटेल में नहीं सुनाया गया है, यूथ विंग है, वुमेन्स विंग है, साइंटिस्ट इंजीनियरिंग विंग है, तो उन सबके प्रोग्राम पूरे भारतवर्ष में होते रहते हैं। उसी प्रकार ये जितने भी हमारे यूथ विंग के प्रोजेक्ट है, ये पूरे भारतवर्ष में अलग अलग स्थान पे होते हैं, बड़ी बड़ी सिटीज के अंदर होते हैं, गांव के अंदर होते हैं। ये है पीस पेंटिंग फेस्टिवल 2009, इसमें भी पूरे भारतवर्ष में बहुत बड़े लेवल पे एक्टिविटीज हुई थी। ये है लेटर टू गॉड जो 2010 में हुआ था। सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन 2010 में 25 साल युवा प्रभाग के पूरे हुए थे, उसके संदर्भ में मनाया गया था। इग्नाइट द यूथ फॉर ग्लोरियस इंडिया, ये एक प्रोजेक्ट है जो 2012 से चल रहा है, अभी भी चालू है। ये एक फिर से शांति दूत यूथ साइकिल यात्रा 2013 में हमने की थी, वो भी पूरे भारतवर्ष में अलग अलग स्थान पे हुई थी। ये जो स्थान आप देख रहे हैं यूथ ट्रेनिंग सेंटर यूथ विंग का है, जो अहमदाबाद में है, जो यूथ विंग का मेन ऑफिस भी है, वहां पे नेशनल लेवल के ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित होते रहते हैं, जिसका लॉन्चिंग जो है, उद्घाटन वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया था। इस वर्ष का जो हमारा प्रोजेक्ट है स्वच्छ स्वस्थ स्वर्णिम भारत, जिस कार्यक्रम के टाइटल के अंतर्गत हम सभी आज एकत्रित हुए हैं, उसका इनोग्रेशन 21 फरवरी को वल्लभ विद्यानगर में हुआ था। 10,000 से भी ज्यादा यूथ आए थे, और भारत सरकार के यूथ सेक्रेटरी और बहुत सारे महानुभावों के बीच में उसका उद्घाटन हुआ था। बाकी ये जो आप एक्टिविटी के कुछ ग्लिम्सेस फोटोग्राफ्स देख रहे हैं, नॉर्मली ये बात होती है कि भी ब्रह्मा कुमारी से एक आध्यात्मिक संस्था है तो सिर्फ आध्यात्मिकता की ही बात करती है, लेकिन ब्रह्मा कुमारी के अंतर्गत ये जितनी भी विंग्स है, और उसमें भी जैसे खास यूथ विंग है, तो समाज के सभी तबकों की, समाज के सभी जो भी समस्याएं हैं उसके ऊपर विशेष रूप से कार्य होता है। ये उसके कुछ एक फोटोग्राफ्स है, और उसके संदर्भ में हमको बहुत सारे अवार्ड और सर्टिफिकेट प्राप्त हुए, जैसे लिम्का बुक में और गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में ऐसे अलग अलग अवार्ड भी हमको प्राप्त हुए हैं। बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमारे बने हुए हैं, जैसे युवा बने शांतिदूत, आत्मघोष, युवा सशक्तिकरण शिविर, व्यक्तित्व विकास शिविर आदि आदि अनेक प्रकार के अलग अलग एक्टिविटीज भी डिफाइन की गई है जो शहरों के अंदर और गांवों के अंदर यूथ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से की जाती है और उसके लिए बहुत सारा लिटरेचर भी तैयार किया गया है। आपको बाहर से उसकी जानकारी प्राप्त होंगी, जैसे स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए, कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए जितने भी प्रोजेक्ट बनते हैं उसकी बुक्स बनती है, साथ साथ सकारात्मक परिवर्तन जो पॉजिटिव चेंज है उसकी भी किताब आपको बाहर से मिलेगी। आप सभी नेक्स्ट सेशन के अंदर आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी से और आदरणीय चंद्रिका दीदी जी से मिलेंगे, जिसका परिचय आपको अभी प्राप्त हुआ है और उनके द्वारा ही ये पूरा यूथ विंग का कारोबार पूरे भारतवर्ष में चलता है। आगे के सेशन के अंदर उनका परिचय भी प्राप्त होगा। आप सभी ने बहुत ध्यान से एक्टिविटी के बारे में सुना, लेकिन सबसे मुख्य बात जो है ये है कि ये सिर्फ यूथ विंग माना ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों के लिए नहीं है। हम सभी आप सबका भी आह्वान करते हैं, आप सब भी हमारे साथ जुड़े और हम अपने इस भारत देश को फिर से स्वर्णिम भारत बनाएंगे। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता मोहन सिंगल जी और भ्राता सुनील जी का। अभी मैं माइक हैंड ओवर कर रही हूँ, फाल्गुनी बहन आगे का कार्यक्रम संचालित करेंगी। हमारे दादी जी भी पहुँच गए हैं आप सबके बीच में, फाल्गुनी बहन आएंगी।
स्वागत की इन घड़ियों को हम आगे बढ़ाते हैं और हमारे बीच मधुबन के विशेष गायक कलाकार उपस्थित हो रहे हैं और मधुरवाणी ग्रुप अपने सुंदर स्वर और लय के साथ आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करने के लिए उपस्थित हो रहे हैं मधुरवाणी ग्रुप।
स्वच्छ स्वस्थ स्वर्णिम भारत, युवा चला रचने भारत, स्वर्णिम भारत, युवा चला रचने भारत, तन है जवान मन है जवान, तन है जवान मन है जवान, आंखों में बनाए भारत पहले मन को स्वच्छ बनाए, स्वच्छ
मुख स्वस्थ स्वर्णिम विचार से स्वर्णिम स्वर्ग सजाए करने भारतोत्थानी स्वागत है सम्मान करने नव निर्माण युवा स्वागत है सम्मान मंगलकारी राहे अभ्यास पथ दिखला रहा राजयोग दिखला रहा अध्यात्म पथ दिखला रहा राजयोग दिखला रहा साथी है भगवान करने भारत उठाई स्वागत है आवाज करने नव निर्माण युवा तुम्हारे कंधों पर है भारी जिम्मेदारी सारी दुनिया देख रही है युवा तुम्हारी युवा तुम्हारे कंधों पर है भारी जिम्मेदारी सारी दुनिया देख रही है राहे युवा तुम्हारी ज्ञान सरोवर आइए जीवन दिव्य बनाइए ज्ञान सरोवर आइए बनाइए ले संकल्प करने भारत उठाइवा स्वागत है आभान करने नव निर्माण युवा स्वागत है सम्मान स्वच्छ स्वच्छ स्वर्णिम भारत युवा चला रचने भारत भारत युवा चला रचने भारत तन है जवान मन है जवान आंखों में करने भारत उठाई युवा स्वागत है आभार करने नव निर्माण युवा स्वागत है
बहुत बहुत धन्यवाद मधुरवाणी ग्रुप का बहुत सुंदर गीत के साथ हमें संदेश भी दिया। हमारे बीच सुरेश तिंगर जी भी उपस्थित हो चुके हैं, हम आपका भी स्वागत करते हैं। बहनों से निवेदन है फूलों एवं बैच द्वारा भाई साहब का स्वागत करें। स्वागत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारी भारतीय परंपरा में विशेष स्थान नृत्य का है और इसके द्वारा हम अपनी बहुत सारी सुंदर भावनाओं को भी प्रस्तुत करते हैं। हमारे बीच आज विशेष कलाकार तेजस्विनी मनोगना उपस्थित हैं, जो बहुत ही विशेष प्रतिभाओं से संपन्न हैं। मैं इनका प्रोफाइल देख रही थी तो बहुत ही बड़ा, बहुत ही सुंदर, इतनी कौन सी बात इनके लिए बताएं और नहीं बताएं, छोड़ दे कौन सी, ये सोच रही थी। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी तेजस्विनी जी का। तेजस्विनी जी इज अ 20-year-old गिफ्टेड प्रोडिगी, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड यंग अचीवर। शी प्रेजेंटेड इंडिया एज अ यूथ एम्बेसडर एंड इंटरनेशनल लेवल। शी ब्रॉट लॉरल टू द नेशन, ऑनर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एपी गवर्नमेंट विथ प्रेस्टिजियस नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स। शी रेज्ड इंडिया फ्लैग हाई इन सार्क कंट्रीज टू। मनोगना इज अ मेरिटोरियस MBBS स्टूडेंट एंड वन ऑफ द लीडिंग वर्सटाइल भरतनाट्यम डांसर, सिंगर, स्पोर्ट्स पर्सन, स्पीकर, योगा प्रैक्टिशनर एंड प्रेजेंट। शी इज अ आइडियल फॉर ना, एक इंस्पिरेशन है प्रेजेंट जनरेशन के लिए। आज वो हमारे सामने उपस्थित होंगी अपने नृत्य कला के द्वारा हमें कुछ संदेश देने। इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत वो अपने नृत्य के साथ बहुत सुंदर मैसेज दे के हुए कर रही हैं। सभी को, सभी देवी देवताओं को पहले वो आह्वान करेंगी, परमात्मा को आह्वान करेंगी, उसके बाद जो हमारा थीम है स्वच्छ 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 स्वस्थ स्वर्णिम भारत, इस विषय को प्रस्तुत करते हुए अपने नृत्य के द्वारा बताएंगी कि स्वच्छता सबसे पहले आंतरिक होती है, आत्मशुद्धिकरण। और आत्मशुद्धिकरण के लिए भारतीय परंपरा में आज तक जो समझते आए हैं वो है कि गंगा, जमुना आदि नदियों के अंदर डुबकी लगा करके अपने आप को स्वच्छ बनाना, पवित्र करना। तो कैसे हमें अपने आप को सचमुच में ज्ञान से पवित्र करना है और स्वच्छ और स्वस्थ समाज के निर्माण करना है, अपने नृत्य के द्वारा प्रस्तुत करेंगी तेजस्विनी। बहुत सुंदर सातों ही नदियां जो विशेष रूप से भक्ति के अंदर, हमारी संस्कृति के अंदर विशेष स्थान रखती हैं और उसको पावन बनाने के निमित्त समझते। वास्तव में ये आत्मिक सात गुण हैं ना, जिनको हम अनुभव करेंगे कल सुबह के सत्र में और विशेष उस आत्मशुद्धिकरण का अनुभव करेंगे। अब इस कार्यक्रम को की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच आदरणीय चंद्रिका दीदी जी हैं उपस्थित, जो इस विद्यालय से 1967 से जुड़े हुए हैं। अपनी एजुकेशन के साथ स्पिरिचुअल एजुकेशन लेते हुए अपनी ये स्पिरिचुअल जर्नी आपने शुरू की, मेडिटेशन प्रैक्टिस करते आपने जो अपने जीवन में प्राप्तियां की, उन प्राप्तियों को और आगे बढ़ाने, औरों को भी अनुभव कराने के लिए आपने अपने पूर्ण जीवन को ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित किया और इस विद्यालय में एक पिलर के रूप में सेवाएं दी और सेवाएं दे रहे हैं। विशेष रूप से अनेक प्रकार की इन्वेंशन रिसर्चेस में आपका इस विद्यालय में विशेष योगदान रहा है, जैसे कि राजयोग शिविर है और मेडिटेशन, जो मास मेडिटेशन की प्रक्रिया है जो हमारे कॉन्फ्रेंसेस आदि में होती हैं, इनका इन्वेंशन और ऐसी कई चीजों को आपने इंट्रोड्यूस किया इस विद्यालय के अंदर। और हमारी यूथ विंग की आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और हमारे महादेव नगर सब जोन की आप जोनल सब जोन इंचार्ज हैं। आपके अंतर्गत 29 से ज्यादा सेवा केंद्र हैं जिनका आप कुशल रूप से संचालन करती हैं। यूथ के लिए आप बहुत बड़े इंस्पिरेशन हैं। युवाओं के जितने भी आपने कार्यक्रम अभी सेवा समाचार में देखे, आपका बहुत बड़ा इसमें इंस्पिरेशन और योगदान रहा है। तो आदरणीय चंद्रिका देवी जी, हम सभी का इस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज की इस सुहावनी संध्या में भारत के कोने कोने से पधारे हुए हमारे युवा भाई बहनों को बहुत ही उमंग उत्साह सबर देख करके हमें भी बहुत खुशी हो रही है। और ऐसे सुहावने समय पर आज हम सबके बीच ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम सबकी अति प्रिय दादी रतन मोहिनी जी, जो कि युवा प्रभाग के चेयरपर्सन हैं और इस विश्वविद्यालय के सह प्रशासिका भी हैं, 90 साल की आयु में आप एक युवा की तरह कार्यरत हैं। आपका हम बहुत बहुत दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। और प्रणाम करते हैं। आज के कार्यक्रम के अनुरूप उपस्थित हमारे मंचस्थ सम्माननीय गेस्ट हमारी बहन रंजना कुमार जी, जो कि एक्स विजिलेंस कमिश्नर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैं। आपका बहुत ही अभिनंदन और स्वागत। श्री सुरेश ठिंगार, चेयरमैन नगर पालिका माउंट आबू, आपका भी हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं।
श्री रजनीश कुमार सेक्रेटरी राजघाट समिति दिल्ली, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और हमारी गुजरात के भरूच के आसपास के सेवा केंद्रों को बहुत ही ध्यान से संभालने वाली बहन प्रभाबेन जी, और जो एजुकेशन विंग की जोनल कोऑर्डिनेटर हैं, आपका भी हम बहुत बहुत अभिवादन करते हैं। आप सभी स्वच्छ स्वस्थ स्वर्णिम रिट्रीट के कार्यक्रम में पधारे हैं। यहां पहुंचते ही आपने उसका प्रमाण तो देख लिया है, क्योंकि ये स्थान तो कितना सुंदर है। स्वर्ग की स्मृति दिलाने वाले इस ज्ञान सरोवर में आप पधारे हैं, तो स्वच्छता देखने में आ रही है। आप सभी ने इस प्रांगण में अपने कदम रखते ही अपने में एक नई ताजगी और नए उमंग और उत्साह का अनुभव किया होगा। किया है? किया है तो जरा हाथ उठाएं। स्वच्छ भी हैं, स्वस्थ भी हैं, और एक नई दुनिया को इस संसार पर उतारने का स्वप्न नहीं लेकिन वास्तविक कार्य योजना के रूप में यहाँ पर कार्य कारोबार चल रहे हैं। तो ऐसे बहुत सुंदर प्रोजेक्ट में आप सभी का हम बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, लेकिन साथ साथ हम आपको पूरे विश्व को और भारत को खास, जैसे गायन था जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बखेरा, इस भारत देश है मेरा, तो फिर से भारत की वो काया बनाने के लिए हम सभी मिल करके इस स्वच्छ स्वस्थ स्वर्णिम भारत में कदम बढ़ाएं, उसके लिए आप सभी को यहाँ बुलाया है, आपका आवाहन किया है। और हमें ये पूर्ण विश्वास है कि यहाँ के 3-4 दिन के इस सेमिनार में आप ये पाएंगे कि किस प्रकार से हम भी अपने जीवन से कुछ समय, कुछ शक्तियाँ और अपने तन मन धन और विशेषताओं को इस श्रेष्ठ कार्य के लिए लगा सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत अनेक प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन होना है, जिसका एक सैंपल के रूप में हम यहाँ अनुभव करेंगे, और उसी अनुभव के आधार पर आप जहाँ जहाँ जाएंगी अपने स्थान पर लोगों को इन अनुभवों से लाभान्वित करेंगे। आप यहाँ आए हैं, मैं आप सभी से इतना जरूर अनुरोध करूंगी के इन 3 दिनों में आप अपने दिल और दिमाग की इतनी सुंदर स्वच्छता को प्राप्त करें। जिस स्वच्छ मन में आप ईश्वर के इशारों को समझ पाए, आप अपने पूर्ण स्वरूप को देख पाए, और आप हमेशा के लिए एक खुशनुमा जीवन की प्राप्ति करें। जिस खुशनुमा जीवन को देखने वाले, ऐसे खुशनुमा व्यक्तित्व से मिलने वाले, ऐसे खुशनुमा लोगों का संग बार बार चाहे, और आपके द्वारा ये सारा संसार खुशनुमा बन जाए, आप चाहेंगे, आपके जीवन में ऐसी खुशियां भर जाए, चाहते हैं तो जरा हाथ उठाएं। तो आप अपनी हर सेकंड को सफल करने के प्रति अवेयर रहना, हर कार्यक्रम को समयोचित पूर्ण रूप से अटेंड करना और उसको अपने में महसूस करना, तो आप अपनी पूर्णता को इसी कैंपस में अनुभव कर पाएंगे। आपने हमें शांति से सुना और इतने दूर से आए हैं, उसके लिए फिर से एक बार दिल से सभी का बहुत हार्दिक स्वागत, सम्मान, अभिनंदन। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी का भी हम सभी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और दीदी ने जैसे कहा कि ये विशेष तीन दिन चार दिन जो आप यहाँ पर रहेंगे और इसका पूरा पूरा लाभ उठाएंगे, और सचमुच अगर हम देखें कि ये समय अपने आप को देना बहुत जरूरी है। जैसे एक सेंटेंस भी पढ़ते हैं, हर वर्ड के बाद एक स्पेस होता है, पढ़ने के लिए भी एक डिस्टेंस रखना बहुत जरूरी होता है, बहुत नजदीक से हम पढ़ नहीं पाते हैं। ऐसे ही ये स्पेस, ये समय जो आपने अपने आप को दिया है और आपके जीवन में सचमुच ये यादगार क्षण बन जाएंगे, तो इन यादगार क्षणों को हम हमेशा के लिए अपनी बुद्धि में, अपने मन में यादगार रखें और एक अच्छे श्रेष्ठ संकल्प की रचना आज करें। और इसी के लिए हम सभी आज के इस कार्यक्रम का उद्घाटन कैंडल लाइटिंग के साथ करेंगे, दीप प्रज्वलन, जो हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ज्योति का प्रकाश जैसे अंधेरे को मिटा देता है, ऐसे ही ज्ञान का प्रकाश हमारे जीवन से भी अंधकार को मिटाता है। तो मैं माननीय मंच से निवेदन करूंगी, आगे आकर के कैंडल लाइटिंग के लिए आगे आएंगे सभी। और हमारे बीच सभा में उपस्थित है भ्राता सतेश पाटिल जी, उनको भी मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी कैंडल लाइटिंग के लिए। विशेष आप महाराष्ट्र से आए हैं। लाइटिंग का भाग बनेंगे, खड़े होकर अपने अपने स्थान पर इस कैंडल लाइटिंग में हिस्सा लेंगे। अंदर ही अंदर अपने आप को सचमुच में क्वालिटी टाइम देने का श्रेष्ठ संकल्प करेंगे।
जलाएं अपने अपने मन में, शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में, जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। बदलने वाला राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला, दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में जग उजियारा होगा प्रेम से सुख ही सुख कण
ज्योति का प्रकाश जीवन के अंदर से अंधकार को समाप्त करे यही शुभ भावनाएं हमारे बीच आदरणीय रतन मोहिनी दादी जी हैं जो इस विद्यालय की फाउंडेशन जब इस विद्यालय की शुरुआत हुई 1936 में उस समय संस्था के फाउंडर ब्रह्मा बाबा के साथ जो ग्रुप जुड़ा उसमें बहुत ही विशेष रतन रहे और उसमें से एक है हमारे बीच आज आदरणीय रतन मोहिनी दादी जी जो केवल 12 वर्ष की आयु से इस विद्यालय से जुड़े और अपने जीवन के अंदर अध्यात्म की तपस्या करते हुए 14 वर्ष विशेष पहले तपस्या जो इस फाउंडिंग इस संस्था की शुरुआत में हुई फाउंडर फादर ने जो करवाई 14 वर्ष की तपस्या आपने वो तपस्या में भी विशेष रहे और जब सेवाएं आरंभ हुई तो विश्व सेवा के लिए भी अनेक सारे विश्व में आपने परिभ्रमण किया सबसे पहला वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस जो जापान में हुआ उसमें संस्था को रिप्रेजेंट करने के लिए जो इस विद्यालय की तरफ से एक ग्रुप गया उसमें आपने 1954 में संस्था को रिप्रेजेंट किया दादी रतन मोहिनी जी ने और सारे विश्व की आत्माओं अनेक देशों में स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल जीने की इंस्पिरेशन देते हुए अपनी आत्मिक स्थिति से आत्मिक गुणों से अपने जीवन को संपन्न बनाने के लिए आप इंस्पायर करते हैं हमारी यूथ विंग की आप चेयरपर्सन हैं और हमारे जो राजस्थान जोन है उस जोन की आप जोनल हेड हैं डायरेक्टर हैं आप पांडव भवन कॉम्प्लेक्स जो हमारा हेडक्वार्टर है उनकी और पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन की भी आप डायरेक्टर हैं साथ साथ हमारी इस विद्यालय की बहुत ही सुंदर ट्रेनिंग होती है जो बहनें अपने जीवन को ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित करना चाहती हैं उनके लिए एक विशेष ट्रेनिंग होती है और उस ट्रेनिंग का 5 इयर्स का पीरियड होता है अब ये ट्रेनिंग के भी आप डायरेक्टर हैं और अनेक अनेक बहनों को ऐसा सशक्त आध्यात्मिक रूप से बनाया है जो अनेकों के जीवन में परिवर्तन लाती हैं। तो आदरणीय रतन मोहिनी दादी जी जो हमारे लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है 90 की एज में भी आपके अंदर यूथ स्पिरिट है और हमेशा ही बहुत ही एक्टिव और अलर्ट रहती आपकी दिनचर्या बिल्कुल एक्यूरेट रहती है और आज हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय दादी जी से हम विशेष ब्लेसिंग्स लेंगे
ॐ शान्ति ॐ शान्ति ॐ शान्ति का अर्थ आप सब जानते हैं ॐ शान्ति का अर्थ बहुत सहज और इस सहज शब्द को हम सरल भाव से याद भी करें और अर्थ सहज स्मृति में रखें ओम शांति अर्थात मैं शुद्ध आत्मा शांत स्वरूप हूँ ओम अर्थात मैं शुद्ध आत्मा वही आत्मा जो शुद्ध हूं और शांत स्वरूप हूं इसलिए ये ओम शांति महावाक्य हम सबको दिल में याद रहे और इसका अर्थ याद करते हुए शांति का अनुभव करते रहो तो आज स्वच्छ स्वस्थ और स्वरम भारत अर्थात ऐसे भारत में निवास करने वाले कौन जो स्वयं भी स्वस्थ स्वच्छ और स्वरम समान बनी हुई हूँ। तो आप सब ऐसे प्रोग्राम के बीच आए हुए हैं और आपको 3 दिन यहाँ है, इन बातों को अच्छी रीत से समझ करके स्वयं को स्वर्ग में आने के लायक बनाएं और अपने अंदर स्वच्छता, मन की स्वच्छता, कर्मों की स्वच्छता और व्यवहार में स्वच्छता, जब इन बातों को हम अपने जीवन में धारण करते हैं, स्वयं की जीवन भी स्वयं के लिए बड़ी आदर्शमय होती है, जो दूसरे भी देख करके और उससे जैसा बनने का प्रयत्न कर सकते हैं। और आप जानते हैं, यह हमारा भारत स्वर्ग भूमि था स्वर्ग भूमि। हम स्वर्ग को याद करते हैं, कांध लाओ, हाथ खड़ा करो। जब हम स्वर्ग को याद करते हैं तो स्वर्ग में ऐसे सब रहने वाले जो स्वच्छ, स्वस्थ, सदा तंदुरुस्त, कभी उनके जीवन में रोग नहीं, निरोगी काया। क्या आप चाहेंगे हम भी ऐसी जीवन बनाएं? उस जीवन बनाने का सरल साधन हम स्वयं के सच्चे स्वरूप को पहचाने और उस पहचान से जो स्वयं की स्वच्छता, अर्थात ये तो आप जानते होंगे, आत्मा सदा स्वच्छ है, ठीक है, बात ठीक है। परंतु मैं आत्मा शरीर के अंदर जब विराजमान हूँ और जब शरीर की कर्म इंद्रियों से कर्म करती हूँ, तो मैं स्वच्छ आत्मा, शरीर के द्वारा मुझे कैसे कर्म करने चाहिए? मनुष्य चाहते हैं हम अच्छे कर्म करें, परंतु आप जानते हैं, आज की दुनिया में अच्छाई को जानते हुए, मानते हुए ये भी समझते हैं ये कर्म नहीं करने चाहिए, फिर भी कर लेते हैं और करने के बाद उसका रिएक्शन अपने जीवन में होता है ना। जब रिएक्शन मिलता है तब पश्चाताप के सिवाय तो और कुछ नहीं। और ये भी तो हम जानते हैं, अगर हम अपने जीवन में ऐसे कर्म करते हैं तो अंत घड़ी कैसी होती है। इसलिए हमारे जीवन के अंदर कर्मों में श्रेष्ठता और कर्मों में श्रेष्ठता का आधार हम स्वयं को के सच्चे स्वरूप को जाने। और जब हम सब ये मानते हैं हम एक पिता परमात्मा की संतान है, मानते हो जब हम परमात्मा पिता की संतान है, परम आत्मा, परम पिता, जो हमारा परम पिता है और उसकी हम वंशावली है, परमात्मा को याद करते हैं, याद का फायदा, जैसा बाप वैसे हम कर्म करें। और मानते हैं परमात्मा के हम सब संतान हैं, हम अपने को बार बार ये बात याद दिलाएं। और इस सृष्टि मंच पर ये भी हम आपको बताते हैं, अब ये सृष्टि, आप मानते हैं कि अभी कलयुग है, अति कलयुग है, अति धर्म की गिलानी है। धर्म को मानते तो है ना, जानते भी है। मान्यता किसको कही जाएंगी? जब हमारे जीवन में धर्म युक्त कर्म हो, धर्म को जानते हैं और ये भी हम मानते हैं इस हमारे भारत में आदि सनातन सत्य धर्म था मानते हैं जो कब था ये निश्चित मानो फिर से होगा जरूर होना है और ये फिर से हमारे भारत में सत्य धर्म की स्थापना हो उसके लिए हम ये चाहते हैं। जब हमारा ही भारत हमारे भारत में सत्य धर्म की स्थापना थी और उस समय में कोई भी दुखी इंसान नहीं था बल्कि आप जानते हैं भारत में देवताओं का निवास था। मानते हो देवताओं के चित्र भारत में माने जाते हैं वो प्रमाण है ना। जब होकर के गए हैं तब तो उन्हों के चित्र बने हैं और हम उनको मानते हैं। जब हमारा भारत देवताओं की भूमि थी ऐसे भारत के हम निवासी हैं। अगर ये बात हम अपने में पक्की करें और उन्हीं बातों को समझ करके जानते तो है समझते भी हैं, ये भी मानते हैं अगर ऐसे कर्म हम भी करें तो हम क्या बन जाएंगे। जब ऐसे देवताएं हमारे भारत में थे तो ये भारत स्वर्ग माना जाता था। क्या हम ये नहीं चाहें? क्या अभी हम चाहें तो फिर से अपने भारत को स्वर्ग नहीं बना सकते? बना सकते हैं। जो मानते हैं वो हाथ उठाएं। अब मानने वाले को क्या करना पड़ेगा? मानते हैं और जानते भी हैं। तो भारत में ऐसे जब देवताओं का निवास था यही हमारा भारत स्वर्ग भूमि कहलाता था जहाँ दुख शांति का नाम निशान नहीं बल्कि रोग का भी नाम निशान नहीं। आप जानते हैं देवताओं के लिए कभी सुना कि कोई रोगी था उनके लिए कोई बीमारी सुनी? वो देवताएं भी हमारे भारत के निवासी थे। जब वो थे तो जो था वो फिर से होना है जरूर। ये मानते हो? क्योंकि यह सृष्टि का चक्कर फिरता रहता है। कलयुग बीता सत्युग आएगा जरूर। सत्युग था वो बदल करके आज कलयुग बन गया है क्योंकि मनुष्यों के विचारों में धीरे धीरे परिवर्तन आता गया। जैसे वो परिवर्तन आता गया वैसे अभी हमें ये शिक्षा मिली है। और अब आप जानते हो भगवान के महावाक्य जब जब धर्म की अति गिलानी होती है मैं गुप्त रूप में आकर के फिर से वही शिक्षा देता हूँ जिससे यह भारत फिर से हमारी स्वर्ग भूमि बन जाए। अर्थात भारत में रहने वाले हम सब भारतवासी फिर से अपने को स्वच्छ स्वस्थ और स्वर्गवासी बना सकें। तो आप यहाँ आए हैं 3 दिन आपका यहाँ निवास है उसके अंदर आप ये बातें सुनेंगे और उसके लिए अभ्यास आप जितना रुचि से करेंगे आप उसका फायदा इन 3 दिन के अंदर अनुभव करेंगे और उस अनुभव के आधार पर आप स्वयं अपने जीवन में ऐसी धारणा बनाने का पूरा प्रयत्न करके औरों के आगे भी एग्जाम्पल बनके अपने भारत को स्वर्ग बनाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। ऐसी आप सबके प्रति आशा है। मैं उम्मीद करती हूँ जब आप आए हैं और 3 दिन का निवास है उसके अंदर जो जो शिक्षाएं आपको मिले वो सारा दिन उन्हीं शिक्षाओं को स्मरण करते देखना हमारे अंदर क्या क्या शुद्ध विचार आते हैं उन विचारों के आधार पर स्वयं के अंदर वह चेतना जागृत करते अपन को ऐसा बनाने का प्रयत्न करते रहेंगे। ऐसी आप सबके प्रति आशा रखती हूँ, उम्मीद है, तो आप जरूर इस बात का प्रयत्न करके और भारत को फिर से स्वर्ग बनाने के निमित्त बन जाएंगे। रखें आशा आप में, रखें। अच्छा, ये बहुत अच्छा है, 3 दिन में आप बहुत कुछ इसके लिए सीख सकेंगे और अगर दिल से उसको स्वीकार करेंगे तो निश्चित अपनी जीवन में अनुभव करके आगे के लिए औरों को भी साथी बना के रखेंगे। ओम शांति शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद दादी जी का। दादी जी ने हमें विशेष रूप से बताया, जैसे लॉ ऑफ एंट्रोपी भी बताया था कि एवरीथिंग मूव्स फ्रॉम ऑर्गेनाइज्ड टू डिसऑर्गेनाइज, ऐसे ही ये दुनिया भी पहले ऑर्गेनाइज थी, बहुत सुंदर थी और आज ऐसी हो गई है। इसे रीऑर्गेनाइज करने के लिए हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और उसके लिए चाहिए सिर्फ अवेयरनेस। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच हमारे विशेष स्नेही बहन रंजना कुमार जी उपस्थित हैं और आज विशेष रूप से आप अपना समय निकाल करके यहाँ पर आए हमें कुछ इंस्पिरेशन और गुड विशेष देने के लिए। रंजना कुमार जी पहली महिला हैं चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया। आप कई अवार्ड से सम्मानित हैं। आपने एज अ विजिलेंस कमिश्नर इन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सर्व किया, चेयरपर्सन नाबार्ड में, चेयरपर्सन कैनरा बैंक में, चेयरपर्सन इंडियन बैंक में आपने अपनी सर्विसेज दिए और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यूएस ऑपरेशंस ऑफ बैंक ऑफ इंडिया बेस्ड इन न्यूयॉर्क आपने एज अ सीईओ वहां पर भी अपनी सेवाएं प्रदान की। इंडियन बैंक जब एक बहुत बड़े लॉस में से गुजर रही थी ऐसे समय पर आपने वहां पर एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ज्वाइन किया, एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपने बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर लाया। वर्तमान समय आप चेयरपर्सन एडवाइजरी बोर्ड ऑफ बैंक कमर्शियल एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स में हैं और आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं ब्रिटानिया इंडस्ट्री में, टाटा ग्लोबल बेवरेजेस में और इंटरनेशनल पेपर्स कोरामंडल इंटरनेशनल लिमिटेड में और रानी ग्रुप चेन्नई में। आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं वर्तमान समय दे रहे हैं, इस विद्यालय से जुड़े हुए हैं और मेडिटेशन प्रैक्टिस भी करते हैं। शी वॉज अवार्डेड बेस्ट वुमन डायरेक्टर फॉर 2014 बाय द एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी। She received the Lifetime Achievement Award in the Banking Industry in 2013. तो आज बहुत सारे अनुभवों से आप अनुभवी हैं, कुछ अनुभव भी हमारे बीच शेयर करेंगे, आज अपनी गुड विशेष इस कॉन्फ्रेंस के लिए देंगे। रंजना जी,
आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी, आदरणीय चंद्रिका बहन जी और मंच पर हमारे विशेष अतिथि जो आज आए हैं और सबसे विशेष हमारे जो यूथ, यंग मैन एंड वेमेन हु कम फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, सब भारत के सब कोनों कोनों से आए हैं, आप सबका बहुत हार्दिक स्वागत। आप लोग, मैं कहूंगी कि आप लोग बहुत खुशनसीब हैं, यू कंसिडर योर सेल्फ वेरी फॉर्चुनेट कि ब्रह्म कुमारी जैसी संस्था जो इतने अनेक प्रोग्राम्स करती है, उन्होंने पिछले मोर देन 25 इयर्स से यूथ भारत की जो नौजवान लड़के लड़कियां उन पे फोकस कर रहे हैं और इस तरह हर साल, जैसे आप देख रहे थे जो प्रेजेंटेशन बता रहे थे हमको कि हर साल नए टाइप ऑफ प्रोग्राम्स, हर साल अनेक नई नई एक्टिविटीज उन्होंने बताई हैं, तो आप लोग सब यहाँ हैं तो मैं समझूं कि आप लोग अपने आप को बहुत ही फॉर्चुनेट, बहुत खुशनसीब समझें एंड ट्राई टू मेक द बेस्ट ऑफ दिस प्रोग्राम. एक्चुअली जब मुझे कहा गया, अब एक्चुअली तो हमारा इंटरेक्शन कल होगा, लेकिन कुछ चीजें मैं आपके सामने आज रखना चाहती हूँ. कि एक तो समझिए कि भारत में जैसे स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि मोर देन 60%, 60-65% ऑफ द पॉपुलेशन इज बिलो 25, बिलो 30 ईयर्स ऑफ एज. तो आप समझिए कि आप सब उसी परसेंटेज में आते हैं. तो ये एक बहुत बड़ी, एक्चुअली भारत को जब बाहर जाते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, प्रेसिडेंट और अनेक लोग, जब अपने आप को मार्केट किया जाता है तो कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी काबिलियत, हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, हमारी सबसे बड़ी द मोस्ट पोटेंशियल, बिगेस्ट पोटेंशियल जो हमारा है वो हमारा यूथ है. जो कोई कोई कंट्रीज आप देखिए जहां पे एकदम सैगिंग पॉपुलेशन हो रहा है, जापान फॉर एग्जांपल, यू विल फाइंड एजिंग पॉपुलेशन. लेकिन यहां पे तो इसलिए आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी कहीं ज्यादा हो जाती है, क्योंकि 60-65% आप लोग ही हैं जो शामिल करेंगे. तो ये पहले समझिए कि बहुत बड़ी आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है. आप लोग सब कई अलग अलग डिसिप्लिन से आए होंगे. समबडी इज डूइंग आर्ट, समबडी इज डूइंग मेडिसिन, कोई इंजीनियरिंग, कोई कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर. लेकिन उस सब के अलावा, वो तो बहुत ही जरूरी है क्योंकि आपका करियर उसके ऊपर बनेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे. लेकिन यहां पे आपको जो मिलेगा वो एक बहुत ही, इट्स अ यूनिक टाइप ऑफ थिंग. आपको यहां पे मिलेगा अ वेरी हेल्दी, अ वेरी हैप्पी, अ वेरी स्ट्रांग माइंड, अ वेरी हैप्पी हेल्दी एंड स्ट्रांग माइंड. बिकॉज जो कुछ हम करते हैं, जो कुछ किया जाता है, उसमें हर एक चीज में हमको अपने माइंड का इस्तेमाल करना पड़ता है. एट एवरी टाइम वी हैव टू यूज आवर माइंड. सो दिस माइंड हैज टू बी ऑलवेज अलर्ट, एक्टिव, बैलेंस, स्टेबल. आजकल देखिए आप कितनी प्रकार की इलनेसेस जो आ रही हैं, आप मेडिसिन देखिए हॉस्पिटल जाके. मेन इज दैट विच कम्स विद द क्वालिटी ऑफ लाइफ जो हो रही है. छोटी उम्र में एक टाइप के मेडिकल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ये हो रहे हैं. मेहनत से कोई आज तक नहीं मरा, मेहनत से किसी ने जान नहीं गई, लेकिन किस प्रकार का माइंड है हमारा है, उसके मन का संतुलन जिसे कहा जाता है, वो चीज की आपको यहाँ पे प्राप्ति होगी. आपको खुद का पोटेंशियल बहुत मिलेगा यहाँ पे, खुद की, जो आपको खुद को जानकारी नहीं होगी कि मेरे अंदर कितनी क्षमता है, कितना अंदर पोटेंशियल जो है वो आपको यहाँ आएगा. एनर्जी जैसी चीज मिलेगी, एनर्जी विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रीडियंट. आज सुबह से थोड़ी देर 8-10 घंटे काम करते हैं, कहते हैं कि मैं थक गया. अब दादी जी को देखिए, शी इज ड्रिवन ऑल द वे 45 मिनट्स नीचे से आई हैं ऊपर आपके साथ, यहाँ कह रही हैं बैठेंगी, फिर बात करेंगी, और भी थोड़े से काम जरूर करके ही जाएंगी. मैं घड़ी घड़ी बोलना नहीं चाहती, एज इफ यू डोंट वांट टू से, बट ऑल ऑफ देम आर देयर. वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम? खाना पीना तो वही, खाने पीने से तो केवल एनर्जी फिजिकल आती, एनर्जी कम्स विद द राइट थिंकिंग. तो अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ वॉट यू आर गोइंग टू बी गेटिंग हियर. इट इज नॉट अनदर रिलीजियस थिंग. नो, देर आर नो रिचुअल्स हियर. This knowledge is pure common sense and logic. Common sense and logic. And that is why it should appeal to the young mind. Because we feel, youngsters bolte hain aajkal, bhai ye kuch humko seedhi baat karo. Straight baat bataiye. Change ho raha hai. We agree. Exchange. So that is why this is something which should appeal to your intellect. I must tell you that in Hyderabad, from where I come, every Sunday we have programs which we do where we have a lot of people, young computer engineers. The family comes, they come and sit there for 2 hours. Why do they come? They are into tremendous jobs with a lot of pressure, working 12 hours, 14 hours, sometimes working all night, and they say, we are getting the strength from here. So these are people who have undergone this, have been benefited by this, and that is one. So the levels of energy are high, clarity of the mind. Jaise हमारे जो मिस्टर सिंगल, जो ब्रह्म कुमार जी सिंगल बात कर रहे थे, वो चीज मैंने खुद में एक्सपीरियंस करी और मैं दोहराती हूँ. वो चीज जो कह रहे थे, क्लैरिटी ऑफ माइंड, बिकॉज यू डू अवे विद वेस्टफुल थॉट्स, यू टेक आउट द वेस्टफुल थॉट्स, आप निकाल देते हैं उसको, जो चीज का कोई मतलब ही नहीं है, जो चीज आपको कुछ सेंस ही नहीं दे रही है, केवल थोड़ी देर के लिए आप खुश हो गए, निकाल देते हैं. तो क्लैरिटी ऑफ थॉट से मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग देखिए, डिसीजन मेकिंग जो वो कह रहे थे, मैं दोबारा उसको फोकस करती हूँ, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव. तो डिसीजन तो आप लोग, निर्णय करने की शक्ति जिसे कहा जाती, यू आर टेकिंग डिसीजन एवरी 2 मिनट्स इन योर लाइफ. वॉट इज द रूट फ्रॉम वेयर डू यू गो, वेयर डू यू कम, हाउ डू यू डू, वॉट कोर्स विल यू टेक, वॉट इज एडिशनल courses you want to take, how do you plan your future. You are taking decisions ऑल अक्रॉस योर लाइफ एंड अनलेस यू हैव अ क्लैरिटी ऑफ माइंड, जब तक आपका मन का संतुलन क्लियर नहीं है आप एक गलत निर्णय ले सकते हैं जिसके लिए आप सारी उम्र भी आपको बुरा लग सकता है. तो समझिए मैं क्या कह रही हूं. निर्णय करने की शक्ति, डिसीजन मेकिंग. एंड अगेन अंडरस्टैंड वन थिंग, जैसे तो कहूंगी हम तो सब आपको अपनी शुभकामनाएं दे ही रहे हैं सब जने, लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती है. ग्राफ होता है, जैसे आप ग्राफ बनाते हो किसी चीज का, यू नो प्रोडक्शन ग्राफ, परफॉर्मेंस ग्राफ, तो द ग्राफ ऑफ लाइफ कीप्स गोइंग अप डाउन अप डाउन. कभी किसी को सारी उम्र 40 साल मेरी सर्विस 40 साल सब बेहतरीन गुजर गया, ऐसा हो ही नहीं सकता. किसी के साथ भी नहीं हुआ, हमारे और आपके साथ कैसे होगा. तो व्हेन द लो कम्स, दैट इज वेयर दिस ज्ञान हेल्प्स अस, दैट इज वेयर दिस नॉलेज विल हेल्प. We will not lose. I will not. You will not lose your hope in life. कुछ भी हो जाए आप कहोगे नहीं, कोई भी सिचुएशन आएगी मैं उसका सामना करूंगा, डिटर्मिंड होकर सामना करूंगा, अल्टीमेटली मेरे ही सक्सेस होगा. थोड़ी बहुत तो लाइफ में उलझने आती हैं. बगैर मैं तो प्रॉब्लम तो कहती नहीं, आप प्रॉब्लम तो वर्ड यूज ही मत करो. प्रॉब्लम, ऑब्स्टिकल, ये वर्ड यूज ही मत करें. आप कहें चैलेंज ऑफ लाइफ, आई विल फेस माई चैलेंजेस. चैलेंज इज अ पॉजिटिव वर्ड, सो यूज द वर्ड चैलेंज, सो यू विल बी एबल टू डू दैट. और लाइफ नेवर रिमेन्स द सेम, और उससे आपका तजुर्बा बढ़ेगा और आप को आगे बढ़ेंगे. बस इससे ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगी, केवल इतना ही दोहराऊंगी कि अगले चार दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. नोट करिए, प्लीज नोट डाउन क्लासेस में. और क्योंकि नोट इसलिए करिए क्योंकि बाहर जब वापस जाएंगे आप उन चीज को पढ़िएगा. डोंट लीव इट असाइड, यू गॉट टू रिवाइज इट. रिवाइज करिएगा ऑलमोस्ट एटलीस्ट वंस अ वीक, बैठ के रिवाइज करिए जो यहां पे आपने बात सुनी. कुछ यहां पे बात करते हुए अगर आपको मन में कुछ प्रकार की क्लैरिफिकेशन चाहिए, कुछ डाउट आया माइंड में, तो उसको उसी समय पे पूछिए, क्लैरिटी लाइए, ताकि आपको सबको. एक दफे फिर मैं कहूंगी कि आप अपने आप को बहुत खुशनसीब समझिए, वेरी वेरी फॉर्चुनेट. हम लोगों को ऐसा नहीं मिला था, इसलिए हम बहुत लेट लाइफ में आए इसमें, लेकिन आप सब हैं. इस इंस्टीट्यूशन का साथ रखिए, जहां पे भी आप जा रहे हैं वहां पे हमारे अनेक सेंटर्स हैं. हमेशा रिश्ता रखिए, ये रिश्ता आपके बहुत काम आएगा. धन्यवाद.
बहुत बहुत धन्यवाद रंजना कुमार जी का. और फिर से उन्होंने अंडरलाइन कराया कि हम अपनी विचारों की शक्ति को ऐसी दिशा दें जो हमारी दशा को बदल दे. तो सचमुच में हम अपने विचारों का शुद्धिकरण इन तीन दिनों में करेंगे जरूर, और ऐसी दिशा अपने आप को देंगे. हमारे बीच आदरणीय भ्राता सुरेश थिंगर जी भी मौजूद हैं, जो चेयरमैन हैं नगरपालिका माउंट आबू के, और पत्रकारिता में विशेष आपका योगदान है. आप यूथ के लिए इंस्पिरेशन हैं, यूथ की सेवाओं में आप बहुत ही अपनी रुचि से अपना समय देते हैं, और हमेशा ही ज्ञान सरोवर के कार्यक्रमों में आप अपना विशेष समय देते हैं. तो हम आमंत्रित करते हैं श्री सुरेश थिंगर जी.
माउंट आबू की पावन धरा पर पधारे देश भर से मेरे युवा साथियों, मंचाचेतन अतिथि रतन मोहिनी दादी और मंचासीन अतिथि साथियों, ज्यादा कुछ नहीं कर कम शब्दों में ही अपनी वाणी को विराम दूंगा, परंतु आपको ये मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जीवन में यदि किसी ने स्वर्ग जमी पे देखा है तो एक बार माउंट आबू आए और इस ज्ञान सरोवर के प्रांगण में देखें, स्वर्ग आपको नजर आएगा. जीवन के अपने जो आप चार दिन यहां पर जो बिताने आए हैं, ये आपके लिए, आपके जीवन के लिए कुशल मार्गदर्शन के रूप में उभरेंगे। लंबे समय से मैं ब्रह्मा कुमारी संस्थान के साथ जुड़ा रहा हूं और हम छोटे मोटे कार्यक्रम हो या बड़े से बड़े कार्यक्रम हो, हम ब्रह्मा कुमारी के साथ में मिलकर हर कार्यक्रम को अंजाम देते हैं। साथियों, मुझे भी नगर पालिका चेयरमैन पद का पदभार संभाले मात्र 6 माह हुए हैं, लेकिन हम लोगों ने ब्रह्मा कुमारी संस्था के साथ मिलकर बस मन में ठाना है कि इस माउंट आबू में वास्तव में कुछ करके दिखाएंगे। और इसका उदाहरण आप देखना चाहते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण देखना चाहते हैं, तो मैं दादी जी से, जीतू भाई से, सभी से अनुरोध करूंगा कि आप एक बार पोलो ग्राउंड का विजिट कराएं इन साथियों को। ब्रह्मा कुमारी के साथियों के साथ मिलकर हम पोलो ग्राउंड में इतनी सुंदर फुलवारी लगा रहे हैं, ब्रह्मा कुमारी और नगर पालिका साथ में मिलकर। आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि माउंट आबू के अंदर इतना बड़ा मैदान और इतनी अच्छी सुंदर फुलवारी। मैं धन्यवाद दूंगा इस मंच के माध्यम से बीके हरीश भाई को। बीके हरीश भाई हमारे साथ में मिलकर इतना सुंदर कार्य कर रहे हैं। और हम लोगों ने, दादी को मैं बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने मन में ठाना है कि इस माउंट आबू को लोग कहते हैं माउंट आबू स्वर्ग है, और स्वर्ग में रहने वाले, आप कहेंगे कि स्वर्ग में रहने वाले कैसे लोग हैं, ये आपको नजर आ रहा होगा। यहां पर हम लोग साथ में मिलकर इस तरह से रहते हैं, और यहां पर ऋषि मुनियों की तपस्या और संस्था का ये जो वाइब्रेशन है माउंट आबू में, उस वाइब्रेशन में देश भर में आपने देखा होगा अनेकों जगह पर महामारी आती है, अनेकों बीमारियां पैदा होती है, कहीं प्लेग है, कहीं स्वाइन फ्लू है, अनेकों प्रकार की बीमारियां आती हैं। लेकिन साथियों, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि माउंट आबू में आज तक कोई बीमारी हमें छू नहीं सकी है। उसका कारण यह है कि संस्था की जो वाइब्रेशन है, जो तपस्या है, जो मन में विश्वास है, हम अपने आप में भी ये परिवर्तन कर सकते हैं। साथियों, आप सभी को भी 4 दिन में बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला है, और आप इस 4 दिनों का पूरा भरपूर उपयोग करें, शायद हमें भी मौका मिलता और हम भी 4 दिन यहां पर आप सभी के साथ गुजारते तो बहुत अच्छा लगता। मैं दादी से कहूंगा एक बार हमारे लिए भी एक ऐसा आयोजन करें कि हम लोग भी कुछ समय दे पाए। और साथियों, हम सब मिलकर, हमने पहले से तय किया था, हम सब मिलकर राजस्थान की पर्वत हिल स्टेशन, राजस्थान का ये पोलो मैदान, आपने देखा होगा माउंट आबू इतना बड़ा पहाड़ है, कहीं आपने बार सुना होगा माउंट आबू पहाड़ों में बसा हुआ है, अभी आपने सोचा होगा इतना बड़ा मैदान भी होगा, सोचा भी नहीं होगा, इतने बड़ा तालाब भी होगा, नक्की झील है, अपर कोदरा डैम है, लोअर कोदरा डैम है, ये सुंदर स्थल है। साथियों, 18 मई को हम लोग सभी मिलकर, हम लोगों ने तय किया है कि माउंट आबू के हम लोग जितने भी स्कूल से बच्चे हैं, सभी का हमने निवेदन किया है, स्कूल के बच्चे हैं, संस्थान के लोग हैं, जागरूक शहरवासी हैं, जितने भी लोग हैं, हम सभी से हमने निवेदन किया है, हम सब मिलकर सिर्फ एक घंटा उस पोलो ग्राउंड को देंगे जहां पर हम लोग साथी सब लोग मिलकर श्रमदान करेंगे। आपको भी कभी ये जीवन में याद रहेगा कि हम माउंट आबू आए थे और माउंट आबू में जो आज ये सुंदर पोलो ग्राउंड ये नजर आ रहा है, थोड़ी सी मेहनत हमारी भी है, ऐसा आप महसूस करेंगे। जय हिंद, जय राजस्थान।
सुरेश भाई ने बहुत सुंदर बात बताई है और हम सभी मिलकर के ही न केवल इस माउंट आबू को, न भारत को, लेकिन सारे विश्व को सुंदर दुनिया बनाएं, इसी लक्ष्य के साथ सभी मिले हैं। तो उसकी शुरुआत करेंगे स्वयं से। हमारे बीच रजनीश भाई जी, एग्जाम्पल माउंट आबू होगा, दादी जी कह रहे हैं इंस्पिरेशन जरूर यहां से ही लेंगे और यहीं से सारे विश्व में फैलेगा। रजनीश कुमार जी जो हमारे बीच उपस्थित हैं, भाई साहब दिल्ली से आए हैं, सेक्रेटरी राजघाट समाधि समिति के हैं आप और प्रेसिडेंट हैं अखिल भारतीय नशाबंदी परिषद के, जिसके प्रेसिडेंट हमारे मोरारजी देसाई जी भी रह चुके हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। और आप इस विद्यालय के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध रखते हैं। रजनीश कुमार जी ने बहुत सारे कार्यों में ब्रह्मा कुमारी के साथ बहुत विशेष सहयोग दिया हुआ है, जैसे कि हमारी मैराथन रेस शुरू होनी थी जिसको राजघाट से शुरू करके रामलीला ग्राउंड तक का ये मैराथन रेस था, हार्मनी रेस, इसको शुरुआत राजघाट से करना था और इसमें आपका विशेष योगदान रहा शुरुआत करने में। और दिल्ली का हमारा जो विशेष सेवा केंद्र है, सारे उन सेवा केंद्रों का हम सभी मिलकर के मेडिटेशन संगठित रूप से करते हैं और वो मेडिटेशन में भी जब शुरुआत करनी थी तो उन शुरुआत के लिए एक ऐसा स्थान की जरूरत थी जो रिमार्केबल प्लेस हो जहां से इस कार्यक्रम की शुरुआत हो, तो वो कार्यक्रम की शुरुआत राजघाट से होनी थी और इसमें भी आपने अपना सहयोग दिया और आप इस विद्यालय के हर कार्य में बहुत ही सहयोगी बनते हैं और स्नेही हैं। और आज यूथ के साथ इंटरैक्ट करने के लिए विशेष दिल्ली से हमारे बीच उपस्थित आए हुए हैं। स्वच्छ स्वस्थ स्वर्णिम भारत के लिए आपकी क्या शुभ भावनाएं हैं, इस कार्यक्रम के लिए आप प्रस्तुत करेंगे।
आदरणीय दादी रतन गोहिनी जी, मंच पर आसीन हमारी बहनें, अतिथिगण, देश भर से आए हमारे क्रांतिकारी युवा साथी, बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज मुझे इतना अच्छा अवसर मिला। मैं पहली बार इस संस्था में आया, मैं सुबह से घूम घूम कर देखते ही जा रहा हूं, मैं अपने एक विद्यार्थी बन गया आकर। मित्रों, मैंने देखा यह जगह बहुत स्वच्छ है, कहीं आपको गंदगी नहीं दिखी होगी। मैं यहां का किचन भी जाके देखा, इतने पवित्र ढंग से खाना बनता है, कोई बीमारी हो ही नहीं सकती है। ऐसा मैंने किचन कहीं नहीं देखा। तो इस जगह और ये ज्ञान का सरोवर भी है जहां हम लोग बैठे हैं, तो फिर क्या बचता है? भारत का निर्माण तो स्वतः हो जाएगा, केवल इस कारवां को आगे बढ़ाने की जरूरत है। हम लोग भी नहीं जुड़े थे, सिस्टर अनसुईया दिल्ली में रहती है, मेरी ऑफिस आई कि आज रक्षाबंधन है, मैं आपका राखी बांधना चाहता हूं। मुझे लगा बहन आई है, बांधेगी। उन्होंने कहा कि आप मुझे एक बुराई दे दो जो आपके पास है। मैं तो असमंजस में पड़ गया, लोग अपनी बुराई को छिपाते हैं। लेकिन मैं 10 मिनट तक सोचा, क्योंकि बहनें आई हैं, मैं दे दिया उनको, वो राखी बांध दी, लेकिन मैंने बताया नहीं कि मैंने क्या दिया उनको। मैं आते वक्त ट्रेन में उनको बताया कि मैंने ये आपको दे दिया था, क्योंकि लगा कहीं मुझसे गलती हो गई तो कहीं ना कहीं ईश्वर है, परमात्मा है, वो हमारी गलती को देखेगा, इसलिए मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा। जब मैं उस पर पूरी विजय प्राप्त कर लिया तब मैं उनको आज मैं बता दिया। तो मेरा कहने का मतलब है कि आदमी का जो हृदय है वह परिवर्तनशील है। हर व्यक्ति के हृदय में ईश्वर वास करते हैं। ईश्वर मानव की अच्छाई के लिए कार्य करता है, वो मानव को गलत कार्य करने की इजाजत नहीं दे सकता। मित्रों, इतिहास साक्षी है, अमलीमाल का परिवर्तन हुआ। तो आज वैसा व्यक्तित्व वाला, वैसा कृतित्व वाला, वैसा पुरुषार्थ वाला व्यक्ति चाहिए जो लोगों के दिल और दिमाग को बदले। भारत तो स्वस्थ था ही, समर्थ था ही, हम दुनिया को शिक्षा देते थे, हमारे यहां इतने ऋषि मुनि पैदा लिए, उतनी औषधि दुनिया में कहीं नहीं थी, लेकिन हम नीचे चले गए। मुझे कारण ढूंढना होगा और पुनः स्थापित होकर करना होगा। मित्रों, आज युवा पीढ़ी पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, दुनिया का स्वरूप बदल चुका है। क्या हम हिंसा से अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं? नहीं। अगर हम हिंसा का सहारा लेंगे तो और हिंसा बढ़ेगी और उसका कोई विकल्प नहीं है। मित्रों, तो अभी दादी जी ने कहा, मैं लिखा भी हूं, ओम शांति का अर्थ क्या होता है? सारी चीज समाहित है, आप कुछ मत कीजिए। आप दादी जी का एक शब्द जो है ओम शांति का जो अर्थ है उसको लिख के अपने ऊपर ढाल दीजिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मित्रों, 5 मिनट का ही वक्त है, मैं कहीं गलती ना कर जाऊं, बोलने की तो बहुत इच्छा है। दूसरा, 1947 के बाद कोई क्रांति इस देश में हुई नहीं। 1974 में थोड़ा देखने को मिला था, सत्ता परिवर्तन हुआ था, उसमें युवकों की बहुत बड़ी भागीदारी रही थी। मित्रों, हालांकि जयप्रकाश अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए, सर्वोदय से समाजवाद तक नहीं पहुंच पाए। मित्रों, तो युवा में एक ललक है, हम जाएं किधर, हम किसके पास जाएं? हर कोई डेवलपमेंट की बात करता है, हर कोई इम्प्लॉयमेंट चाहिए, सब कुछ चाहिए। हमारे देश का युवा दिशा विहीन हो रहा है। मित्रों, उसको एक रास्ते की जरूरत है, एक मार्ग की जरूरत है, जिसका स्वरूप आप देख रहे हैं अभी जो हमारा चुनाव हुआ। मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, मैं बिल्कुल, लेकिन युवा की बहुत बड़ी भागीदारी रही। वो जमाना गया कि हम किस संप्रदाय के हैं, हम किस जाति के हैं, लोगों ने हट करके राष्ट्र को सर्वोपरि माना और देश की विकास की कल्पना की। हर कोई इम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो स्वस्थ का मतलब स्वस्थ मस्तिष्क भी होना चाहिए। हमारे माननीय राष्ट्रपति, मैंने एक इंटरनेशनल सेमिनार करवाया था हाल में, उसमें माननीय राष्ट्रपति जी आए थे उसके उद्घाटन में, और मैंने विदेशों से भी और देश भर के सारे लोगों को बुलाया था, और अपनी संस्था से भी बहनें भी आई थी, मैं इनवाइट किया था विज्ञान भवन में। तो हमारे राष्ट्रपति जी ने कहा था, मैं बता दूं, स्वच्छता के 3 आयाम है, स्वच्छ मस्तिष्क, स्वच्छ शरीर और स्वच्छ वातावरण का जिक्र करते हुए उन्होंने स्वावलंबी भारत की कल्पना की थी। मित्रों, तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास वक्ता आए थे, किसी ने कहा कि एजुकेशन, इम्पावरमेंट, इम्प्लॉयमेंट, जनरेशन एंड डेवलपमेंट, तो बहुत तरह की चीजें हमारे पास निकल के आई थी, कभी हम लोग चर्चा करेंगे, मौका लगेगा तो। मित्रों, ये बहुत स्वर्णिम अवसर है, आप कुछ यहां से लेकर जाइए और ये अलख जगाना है। इस ज्ञान के सरोवर से हमारा तो पानी भी अच्छा था, भोजन भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, हम लोगों ने गंदा किया है, इसे साफ करने की जिम्मेदारी भी मेरी है। मित्रों, और महात्मा गांधी तो स्वच्छता के प्रति उन्होंने काफी, उनका तो एक एजेंडा ही था। और ऐसे भी जब लक्ष्मी की पूजा करते हैं हम लोग तो घर को साफ सुथरा करते हैं, और साफ सुथरे घर में ही लक्ष्मी का प्रवेश होता है। मित्रों, इसीलिए बहुत सारी बातें हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी है, और इस जगह से आप नई चीज लेकर के जाएंगे और समाज को एक बहुत बड़ा दिशा मिलेगा। मित्रों, मैं रविन्द्रनाथ टैगोर की एक पंक्ति है, डूबते हुए सूरज ने दुनिया को पूछा, कौन करेगा मेरे डूबने के बाद मेरा काम। एक दिए ने कहा, मैं करूंगा मेरे आका जो मुझसे संभव हो सकेगा। जिम्मेदारी आपके ऊपर है, सबको आपको ले चलना है, एक अच्छे राष्ट्र की कल्पना आपको करना है। करना कुछ नहीं है, बेस बना हुआ है, इसी कारवां को आगे बढ़ा देना है। थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश कुमार जी का। और हमारे बीच आदरणीय प्रभा दीदी जी भी उपस्थित हैं, जो अपनी शुभ भावनाएं हमारे इस कॉन्फ्रेंस के लिए प्रस्तुत करेंगे। प्रभा दीदी भरूच सेवा केंद्र के संबंधित 20 से अधिक सेवा केंद्रों का कुशल रूप से संचालन करती हैं, और हमारी एजुकेशन विंग जो राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत बनी हुई है, आप उनकी गुजरात जोन की कोऑर्डिनेटर भी हैं, और अनेक अनेक लोगों को स्पिरिचुअल जीवन जीने के लिए इंस्पायर करती है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन देते हैं। आदरणीय प्रभा दीदी, ओम शांति। परम श्रद्धे आदरणीय दादी रतन मोहिनी, चंद्रिका बहन, विशेष सारे भारत से पधारे हुए युवा भाई बहने, आज ये महासम्मेलन में आप सभी युवान पधारे हैं। युवाओं के लिए कहा जाता है, युवा जग की शान है, तो ये पंक्ति याद आती है कि युवा इस जग की शान है। तो शान स्मृति में आते ही स्वतः ही एक ऊर्जा जागृत होती है कि हम इस जग की शान है, और शान कैसे बनी रहे वो प्राप्त करने के लिए आप विशेष इस महासम्मेलन में पधारे हैं। युवाओं को विशेष जीवन के अंदर हमेशा जब भी कार्य करते हैं या जीवन को अपना सुचारू रूप से चलाने के लिए विशेष एक तो कंपनी की आवश्यकता होती है और एक कंपेनियन की आवश्यकता होती है। तो कंपनी और कंपेनियन, साथी और साथ, कहते भी हैं जैसा संग होता है वैसा रंग होता है। तो संग का रंग सबसे ज्यादा प्रभावित युवाओं को ही करता है, और जिस संग के रंग में वो ढल जाते हैं उस प्रकार का उनका जीवन बन जाता है। तो अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए श्रेष्ठ संघ की आवश्यकता होती है, और श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ संघ जो है वो संघ परमात्मा का है। जितना परमात्मा का संघ साथ हम रखते हैं उतना ही हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता जाता है, क्योंकि परमात्मा जो है वो सर्व शक्तियों की खान है, सर्व शक्तियां उससे हमें प्राप्त होती हैं, वो शक्तियों का स्रोत है। तो जितना हम उसका संग करते जाएंगे उतना हमारे अंदर उनकी शक्तियां आती जाएंगी।
शक्तियों को भी धारण करते रहेंगे और परमात्मा को अपना साथी बनाकर चलेंगे। तो कहते हैं जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। तो जीवन में आगे बढ़ना है तो परमात्मा को साथी बना करके अगर हम चलते रहेंगे तो हम अपने जीवन को बहुत उज्जवल और श्रेष्ठ बना सकेंगे। मैं यही कहेंगी आप सभी युवाओं को कि अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए परमात्मा को ही कंपेनियन और कंपनी बनाना। ओम शांति।
आदरणीय प्रभा दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम को संपन्न करते हुए मैं निवेदन करूंगी बहनों से कि हमारे बीच उपस्थित जो भी सम्माननीय अतिथि आए हैं उनको ईश्वरीय सौगात स्वीकार कराएंगे आदरणीय दादी जी के हस्तों से। रंजना कुमार जी को, रजनीश जी और सुरेश जी को ईश्वरीय सौगात दादी जी स्वीकार करा रहे हैं। जो भी सभा में उपस्थित हैं, आप जो मेहमान के रूप में आए हैं, आप सभी को भी ईश्वरीय सौगात प्राप्त होंगी। तो सभी यहीं पर रहेंगे। दादी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी जो मंच पर उपस्थित हैं हमारे मेहमानों का भी हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं।